نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر 240 کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الصلاۃ کا یہ سیکنڈ سیشن ہے یا کتاب الصلاۃ کا اگلا سیشن ہے اور حدیث نمبر ہے 240. اس میں جو ٹاپک ہے آج ہمارے پاس ما یستر من العورتی ماں میں نے جو یستر چھپایا جاتا ہے من العورتی چھپائے جانے والی چیزوں میں یعنی جسم میں جو قابل ستر حصے ہیں یعنی جس کو آپ پرائیویٹ پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کے قریب کی جگہ تو نماز میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جس غربت اور مفلسی میں زندگیاں بسر کرتے تھے اس کی عملی تصویریں ہمیں ان احادیث کو پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. بعض دفعہ ایسے لگتا تھا کہ پورا کپڑا پہنے بغیر نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں. اسی سے ملتی ہوئی بات اس حدیث میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء وان يحتج الرجل من في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا منع کیا, نہا کا معنی کیا منع کرنا یعنی روکا پروہیبیٹڈ کے معنوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے انشتمال السما, اشتمال السما کہتے ہیں اتنے زور سے کپڑے کو کس کے باندھنا کہ ہاتھ بھی نہ کھلے. دیکھیں لفظ اشتمال میں کیا شملہ شمال شمل اور سما وہی لفظ ہے جس کو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سمن بکمن امیون فہم لا یرجون, تو سم کہتے ہیں نا بہرے کو. تو اشتمال سما کہہ کہ اتنی سخت بکل ماری جائے کپڑے کی کہ ہاتھ بھی نہ نکلے, یعنی بالکل بچے کو جیسے بعض مائیں باندھ کے ٹائی اپ کر دیتی ہیں نا. تو آپ نے منع کیا کہ اتنی زیادہ سخت بکل نہ مارا کرو. کیوں ابھی دیکھتے ہیں. اور دوسری بات وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, اور آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ گوٹ مار کر ایک کپڑے میں بیٹھنا, یعنی جسم پر بس ایک چادر ہے تو گوٹ مارنا کیسے کہ جس میں ٹانگیں کھل جاتی, چوکڑی مارنا نہیں کہتے ہم اپنے ان پہ, یعنی ایسی کیفیت کہ جب وہ اٹھے گا تو اس کا پرائیویٹ پارٹ دکھے گا. منع کیا یعنی بعض دفعہ صحابہ کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا تھا کہ اس کو باندھ کر اس طرح سے بیٹھنے کا حکم ہے کہ جب اٹھیں تو پرائیویٹ پارٹ نہ کھولیں. آپ سوچیے ہم اپنے اوپر لے کے سوچیں, ہمارے تو بچوں کا بھی یہ حال نہیں ہے, بڑوں کی تو بات چھوڑیے, ہمارے بچوں کے پاس اتنے اتنے کپڑے ہیں تو کہاں پھر ان کا حال تھا. پھر فرمایا لیس علی فرجی ہی منہ شیئن, کہ اس کی شرم گاہ پر کچھ بھی نہ رہے. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کپڑا باندھنا کہ جس سے ستر کا کھلنا اس کا اندیشہ ہو تو اس کو نہ کیجیے. گوٹ مار کر بیٹھنا کیا, دونوں سیریں زمین پر رکھ کر اپنی پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھنا. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا ایسے جیسے زمین پہ بیٹھے تو گھٹنے کھڑے کر دیتے ہیں. ایک تو چوکٹی مارنا ہے نا, چوکٹی مارنے کو سوچیے کہ ٹانگیں سیدھی کھڑی کر لی جاتی ہیں, اور اکثر بوڑھے لوگ ٹیک لگا کے تو پھر آگے بازو کر کے تو اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ کے ذہن میں تصور میں آ رہا ہوگا. تو اس سے منع کیا کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا اس میں ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ ستر چھپائے جانے کی جگہ اور اس کو بغیر وجہ کے کھولنا نہیں چاہیے. اگلی روایت کیا ہے, عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس چیز سے, پہلی چیز ان بیعتینی, دو قسم کی خرید و فروخت سے, یعنی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت ٹریڈنگ جو بھی ہے, اور بیعتین دو طرح کی چیزوں سے منع کیا کہ اس طرح کی ٹریڈنگ نہ کرو. پہلی کیا ہے ان اللماسی, لماس ایک کیا ہے چھونے سے, اور دوسری کیا ہے ون نبازی, اور دوسری جو محض پھینکنے سے پختہ ہو جائے, اور تیسری وَأَن يَشْتَمِلَ السُّمَّ, اور یہ کہ زور سے بکل ماری جائے یعنی اشتمال سما سے بھی منع کیا, اور وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, اور اس بات سے بھی منع کیا کہ انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے. اب آپ دیکھیے ہمارا یہ ٹاپک نماز کا چل رہا ہے نا, تو یہ جو بیع کی دو قسمیں اس کو ابھی ہم نہیں دیکھتے, لیکن आज भी जो लोग कारोबार करते हैं उनको ऐसी चीज़ों से बचना है। इंशाल्लाह जब इसी किताब का किताबुल बियू आएगा तो लिमास और निवास क्या चीज़ें होती हैं इसको हम वहाँ देखेंगे। अभी कहूँगी तो बात डिस्ट्रैक्शन में चली जाएगी। यहाँ वही बात है जो ऊपर अली हदीस में, नंबर एक यश्तमील सम्मा इश्तमाले सम्मा, यानी ऐसे घुटने जोड़ कर खड़े कर कर बैठ जाना कि उठने में शर्मगाह के खुलने का खतरा हो, और दूसरा यह तबीयर रजुलू फी सौबे माहद, एक कपड़े में भी इंसान नमाज ना पढ़े। अच्छा अब है ही एक तो क्या करे, ये भी एक सवाल आता है। तो फिर पिछली हदीसों में तुमने पढ़ा था ना कि फिर एक कपड़ा और इतना बड़ा है वस्त्र है, तो फिर उसको इस तरह से जैसे वो साड़ी का बुकल मारते हैं तो कंधों पर डाल ले, यानी आम हालात में मर्द के कंधे नमाज में कवर्ड होने चाहिए, ये एक हुक्म है। बाज़ दफ़ा बाज़ मर्द घर में नमाज पढ़ते हैं तो बनियान पहनते हैं, और वो बनियान बिल्कुल स्ट्रिप्स वाली होती है तो वो बेहतर नहीं होती। अगर बनियान पहनते हैं तो दो चीज़ें देख लें, एक तो ये है कि उसके कंधे ढके हों यानी स्लीव्स वाली हो थोड़ी सी, और दूसरी है कि वो इतनी लंबी हो कि नीचे अगर कोई ऐसी पैंट पहनी है या टाइट किस्म का ट्राउजर है तो प्राइवेट पार्ट नुमाया ना हो। जैसे औरत के जिस्म के हिस्सों को छुपाना है और बहुत तंग नहीं पहनना, सी थ्रू नहीं पहनना, सेम यही चीज़ मर्दों के लिए भी है। आप इमेजिनेशन में लाएं कि एक मर्द है जो जीन्स पहनता है, और जीन्स भी ऐसी कि बिल्कुल जिस्म पे सिली हुई है, अब ऊपर छोटी सी टी शर्ट पहन ली जिससे हिप्स भी कवर्ड नहीं है, तो उसमें नमाज नहीं होगी। जिस तरह औरत रुकू में सजदे में जाती है तो उसकी बैक खुलती है तो मर्द की भी खुलती है, तो इतनी तंग ट्राउजर जिसमें जिस्म के पार्ट दिखें या इतनी स्ट्रेची है, जैसे बाज लोग जॉगिंग ट्रैकिंग सूट जॉगिंग वाला सूट है कोई स्ट्रेची है, ये बिल्कुल जिस्म पे सिला हुआ दिखे, उसमें नमाज नहीं होती। अगर मर्द ने कोई ऐसी चीज़ पहनी तो फिर उसको कम से कम ऐसी लंबी शर्ट या बुनियान पहनी होगी जो कम से कम उसकी थाइस को कवर कर ले। और यहाँ से इसी में आप अपने बच्चों को भी से ट्रेनिंग दें। देखिए हया की बात है ना, हम अक्सर औरतों के साथ हया की बात करते हैं, मर्दों को नहीं सिखाते, इससे फिर आगे जाके बहुत खराबियां आती हैं। एक मर्द बाजारों में गलियों में फिरे और उसका जिस्म खुले तो क्या उससे फितना नहीं आएगा? अगर एक औरत को देखने से मर्द उसकी तरफ रागिब होते हैं तो मर्द को देखने से दूसरे मर्द भी देखेंगे और औरतों की भी नजर पड़ेगी, तो लिहाजा इस तरह की काम नहीं करने चाहिए। फिर अगली रिवायत देखते हैं। अनु रदी अल्लाह अन्हु काल वासनी अभी अबू बकरिन फी तिलकल हज्जती, यानी हज़रत अबू हुरैरा ये रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, हज में कुर्बानी के दिन मनादी करने वालों के साथ रवाना किया। देखिएगा इसको, बासनी भेजा मुझको मबूस किया अबू बकर ने, अबू बकर ने फी तिलकल हज्जती इस हज में मुअज्जिनीन यौम नहर, दो मनादी करने वाले, एक होता है मुअज्जिन ठीक है एक हुआ ना, तो मुअज्जिनीन मुअज्ज नहीं है बल्कि मुअज्जिनीन, दो भेजने वालों के साथ मुझे भी भेज दिया। क्यों भेजा? नुअज्जिनु बिमिना, ताकि हम मिना में ये ऐलान कर दें। क्या ऐलान कर दें? अला ला यहुज्जु बादल आमी मुशरिकुन, के आज इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा। जो लोग तफसीर पढ़ चुके हैं वो समझ गए होंगे, बरातु मिनल्लाही सूरह तौबा की इब्तदाई आयतें। जो लोग नए हैं उनके लिए चंद जुमले, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मबूस हुए, वहाँ पहले से खाना काबा मौजूद था जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर के नाम पे बनाया था, और वहाँ तौहीद ही उसकी बुनियाद थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुशरिकीन मक्का में इतना जवाल आ गया था कि उन्होंने उस घर को बुतों से भर दिया था, और उस घर में इतने बुत थे कि मुसलमान भी वहीं नमाज पढ़ते थे, मुशरिक भी वहीं आके अपनी इबादत करते थे। वहाँ तो आपने कुछ नहीं किया, खामोश रहे, अपनी इबादत जैसे भी करते थे, लेकिन जब हिजरत के बाद मक्का से आप निकले मदीना, अब मदीना में जाकर आप थोड़ा से एस्टेब्लिश हो चुके थे, मदीना दुनिया में पहली इस्लामिक रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी, जब आप थोड़ा से स्ट्रांग हुए और फिर कुछ मुख्तलिफ हालात से गुजरने के बाद सन 8 हिजरी आ गया जिसमें मक्का फतह हो गया। वो कैसे हुआ ये एक सीरा कोर्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बाहर आ जाए कि मक्का फतह हो गया, 8 हिजरी था। अब क्वेश्चन क्या था कि आप मक्का पर मुसलमानों का कब्जा है, खाना काबा उनके अंडर आ गया, अब क्या किया जाए? बदस्तूर वही तरीका था जो उस वक़्त तक चल रहा था, यानी आप देखिए तकरीबन 13 और 8 21 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ्रिक्शन नहीं पैदा किया। हाँ जब मक्का फतह हुआ तो आपने अपने हाथों से फिर वहां रखे हुए बुतों को तो तोड़ दिया, और बाकी सहाबा को भी भेजा कि मक्का के गिर्दो गिर्दो नवाह की जो बस्तियां हैं जहां भी वहां कोई बुत ना नजर आए। अब ये तो पाक हो गया। क्वेश्चन क्या उठा कि उसके फौरन बाद जब अगले साल सन 9 हिजरी का हज का मौसम आया, तो मक्का वाले या मुशरिक जो इर्द गिर्द थे, जैसे अब लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं, वहां तब भी जाते थे। अब ये क्वेश्चन था कि कैसे जाएं, क्योंकि ये तो अब मुस्लिम टेरिटरी में बदल गया। लिहाजा उससे पहले सन 9 हिजरी जब आया, हज का मौसम था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो अबू बकर सिद्दीक को भेजा और फिर उनके पीछे हजरत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को भेजा, क्योंकि कुरैशी थे हजरत अली, रिश्तेदार भी थे और मक्का में ज्यादा लोग उनके रिलेटिव थे, तो आपको इहतमाल था कि कहीं अबू बकर की बात पे कोई मसला ना खड़ा कर दें तो साथ इनके खानदान का एक शख्स भी भेज दें। ये उस मौके की बात है। जो इतनी लंबी बात सुनी है, इसमें से अमल की बात क्या, कि हमारा इस्लाम किस चीज से फैलता है, हम दूसरे के साथ टकराव की पोजीशन ना इख्तियार करें। आप देखिए कि वहां तो एक तरफ मुशरिक और एक तरफ मुसलमान थे, कुफर और शिर्क और इस्लाम की जंग है। आज हमारे मुसलमानों में दोनों खुद को मुसलमान कहने वाले, लेकिन मसलक के फर्क पे, फिक के फर्क पे अपनी मस्जिदों में दूसरों को आने नहीं देते। दूसरे आए उनकी मस्जिद में अपने तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकता। तो ये बात सीखने की है, सब्र, बर्दाश्त, हौसला, दूसरे को बर्दाश्त करें। असल खूबसूरती इस्लाम की यह है कि हक पे अमल करें, दलाइल को बुनियाद बनाएं, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, जो बात समझ आती है। रह के दूसरे मसलक के लोग, दूसरे उलमाए कराम जो दूसरे फिक को देखते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। इस्लाम कभी भी इस तरह नहीं चाहता कि आप उठ के दूसरों की मस्जिदों में जाकर हमले कर दें और करवा दें। तो यहाँ से अबू हुरैरा का ये अमल पता चल रहा है कि अबू हुरैरा भी साथ थे। जहर के उस दौर में ये तो नहीं था कि एक पेलटॉक में मैसेज दिया सबको पहुंच गया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया सबको पहुंच गया, वहाँ वन ऑन वन बेस पे करना पड़ता था। कुछ लोगों ने एक जगह अरफात में खड़े होकर ऐलान किया होगा, कुछ ने दूसरे, कुछ ने मक्का के पास, तो जहाँ जहाँ बात हो सकी वो की। तो अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मेरे साथ एक और भी थे, तो हमने जाके मीना में ये ऐलान करना था कि आज के बाद यहाँ कोई मुशरिक नहीं आएगा। ये भी तो इस्लाम की रियायत है ना, आने दिया। हम होते पहले ही खबर डाल देते, खबरदार आज के बाद ना आना मक्का में, अब इस कुफर नहीं चलता। और आप पढ़ें कुरान में कि जब वो ऐलान हुआ तो साथ फिर 4 महीने की मोहलत भी दे दी, 4 महीने तक आ लो, सोचो बैठो, हत्ता यस्मा कलामुल्ला, आना चाहो मोस्ट वेलकम, आओ हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें इस्लाम सिखाएंगे, उसके बाद या तो मुसलमान हो जाओ या फिर तुम मक्का में नहीं आओगे, या क्यामत तक मक्का में नहीं आओगे। दूसरी सूरत क्या थी कि आपने उनको ये भी बात कह दी कि यानी तुम्हें आज यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिल रही और तुम फौरन चले जाओ और तुम्हें बहुत कुछ कह दिया जाएगा नहीं। अच्छा, एक सूरत ये आपके जहन में आ सकती है कि ना ही बेचारों को रोका जाता, आते रहते वो भी उधर ही। एक क्वेश्चन आता ना, अच्छा जब इतना जो सबर 21 साल किया था तो फिर एक कोना बना देते कि मुशरिक भी आके यहाँ इबादत करें, तो मुझे बताइए कि इसका नतीजा क्या निकलता। इस हज और उमरे के ट्रिप में मैंने इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि जितना इस वक्त पूरी दुनिया वेस्टर्न कल्चर के अंडर है और मीडिया ने सहूलत पैदा कर दी, वो तो सऊदी अरब के भी घर घर में चलता होगा, लेकिन मक्का और मदीना आप देखिए कि हम जितने भी दिन वहां रहे, जिस दिन हम आने वाले थे तो मैंने अपने साथी से कहा कि आप फील करें मक्का में या मदीना में, जब से हम इधर आए हमने एक भी मुशरिक नहीं देखा। ये कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है, सब एक नजरिए के लोग, सब कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून पे अमल करते हुए। फिर मैंने कहा कि देखें कि जब से हम इधर आके बैठे हुए चले मक्का से मदीना, कोई एक औरत ऐसी गंदे हुलिये में नहीं देखी कि देख के नजरें गंदी हो जाए। राह चलते होती है ना गंदी, जितना मर्जी बचना चाहे किसी के टाइट ड्रेस, किसी की पैंट्स, किसी के स्ट्रेची कपड़ों को देख के तबीयत पे बोझ आता है ना, वह नहीं आता। यही वजह आप वहां अपने मर्दों के साथ जब जाएंगी और अगर बेटे हैं या कोई भी, आप उनके रवैयों में फर्क देखेंगे। माहौल का असर होता है, नजरें गंदी होती हैं, सोच गंदी होती है, उससे गुफ्तगू भी गंदी होती है। तो मुझे इतना वो सोच के अच्छा लगा कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। अल्लाह ने उस एक खित्ते को आप कह लीजिए कि सारी दुनिया के कल्चर से आजाद कर दिया कि यहाँ आओ तो तुम्हें सिर्फ इस्लामिज्म दिखे, फिर वहां कोई इस्लाम फोबिया का नाम नहीं बोलेगा, सब कोई एक धुन लगी है, सब एक काम पे चल रहे हैं। और फिर एक और चीज जो मेरी फीलिंग थी, अब मौका आया तो आपसे शेयर कर रही हूँ, एक और चीज जो देखी वो क्या है, कितने लोग होते हैं वहां, आप देखिए हजारों के लाखों की तादाद में भी चलें, आज के हालात में बात कर लें कि एक वक्त में तवाफ करने वाले 1 लाख लोग हैं, कमोबेश इससे भी ज्यादा ही होते होंगे, लेकिन इतने तो हम लगा लेते हैं। ये बताइए कभी किसी ने कोई खबर सुनी, किसी मर्द ने औरत को छेड़ा, चुटकी काटी, किसी की नजर से नजर मिली, कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह की एक हिकमत है, मैंने एक स्कॉलर थे तो उनसे ये बात कही कि क्यों ना यहाँ औरतों की क्यों लग जाए, मर्दों की कुछ लाइनें हों और एक रोप उसके इर्द गिर्द घूमते जाए, सात चक्कर भी हो जाए, एक दफा उसमें घुस जाए तो फिर आप चलते जाए। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हम कर सकते, क्योंकि जिस दिन से ये घर बना है तब से लेके आज तक अल्लाह का यही तरीका है कि यहाँ औरत मर्द साथ रहे। तो इसकी हिकमत क्या है? मैनेजमेंट सिखाई है कि जिंदगी में जब कभी किसी जगह औरत और मर्दों का इख्तलात हो, एयरपोर्ट्स पे होगा, जहाज़ों में बैठेंगे तो होगा, ट्रेन स्टेशंस पे होगा, आप ना भी बाजारों में जाके मर्दों से बात करें, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंट्रेक्शन ना हो? तो फिर सिखाया गया कि औरतें और मर्द कैसे रहें। तो ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है कि वहां जाकर नजरों की भी हिफाजत होती है और सोचों की भी हिफाजत होती है। तो अल्लाह ने उस इलाके को किसी मुशरिक के ना आने का हुक्म देकर मुसलमानों को कम से कम जमीन का एक टुकड़ा तो दे दिया कि जहां अल्लाह के हुक्मों पे अमल करने की बरकतें लोग देखते हैं। ये सारी सोचें ही हैं इन दिनों ही की। और वो क्या है कि अल्लाह ने ये लगा कर ना पाबंदी के यहाँ मुशरिक नहीं आ सकता, हम हाँ मुसलमानों पर भी बड़ा एहसान किया। अगर यहां मुशरिक आ सकते, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, उन्होंने इधर आकर और यहाँ से जो आइडियाज लेने थे और जो वहाँ डिसिप्लिन और कायम कर देना था, हो सकता है कि हम मुसलमानों को भारी ना आती। जब वो तस्वीरों में देखते होंगे, जब वीडियोस में देखते हैं, दिल में उनके तो जरूर आता होगा, ऐसे लगता है इंसानों का एक गिरोह है, ऐसे लगता है कि पानी में तैर रहे हैं लोग। इतने लोग होते हैं, समटाइम यकीन करें कि ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं वो जो टेम्परेरी रिंग्स आजकल बने हुए, ऐसे फील होता है कि पानी है नीचे और ये सब यूं तैर रहे हैं। फीलिंग आती है ना, पानी में सब खड़े हैं और सब यूं हाथ खड़े, इस तरह यूं एक हज में चल रहे होते हैं यूं सब। कि वो एक साथी की बात कि यहां आके तो कुछ कदम ना भी उठाओ, पीछों नहीं धक्के करके तवाफ करा देना आपका। असल मेरा तवाफ शुरू होगा जब मैंने यहां से अपने घर जाना है। मेरा असल तवाफ वहां शुरू होना है कि मैंने सोसाइटी से अपोजिट जिंदगी बसर करना चाहनी है, तो लोगों ने मुझे फिर पुश करना है, फिर वो रिजिस्ट करते हैं। तो बहरहाल सीखने वालों के लिए बातें बहुत सारी हैं, ना सीखने वाले तो इतनी देर में एक तवाफ भी पूरा कर लेते। तो दूसरा हुक्म क्या था? यतूफ बिल, और एक तो क्या कि हज नहीं करेंगे, और दूसरा यतूफ बिल बैती और यानन, कोई मुशरिक हज भी नहीं करेगा और कोई बरहना होकर तवाफ नहीं करेगा। सूरत अल अराफ में कुरान पाक में ये चीज आती है कि मक्का वाले कपड़ों के बगैर तवाफ करते थे, जिस्म पर औरतें प्राइवेट पार्ट पर चमड़े का एक टुकड़ा रख लेती थी, और जब कोई इनसे पूछता कि इस बेहयाई की वजह क्या है, तो अक्ल इस्तेमाल करते थे। देखिए, अल्लाह के हुक्म में अक्ल का इस्तेमाल पसंदीदा नहीं है, क्योंकि शैतान पहली हस्ती है जिसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अक्ल इस्तेमाल की थी कि ना खैरो मिन, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, ठीक है? तो अक्ल नहीं इस्तेमाल करनी। अक्ल वो क्या इस्तेमाल करते थे? कहते थे इन कपड़ों में गुनाह करते हैं, तो अल्लाह के घर आके ये सब छोड़ के नेचुरल ड्रेस में आ गए। आप बताइए, उल्टी खोपड़ी है ना। लेकिन शैतान इस पे लोगों को मुतमईन करता है। जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी ने इस पर पाबंदी लगा दी कि आज के बाद कोई नेकेडली तवाफ नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? सुम अर्दफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन, फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत अली को रदीफ बना दिया। अर्दफ का लफ्ज क्या है? उर्दू में आप लफ्ज सुनते हैं काफिया और रदीफ। काफिया क्या होता है? पहला मिसरा, तो रदीफ उसके बाद वाला, यानी उसके वजन पे ही होता है ना मोस्टली, जब एक में कहते हैं तो दूसरे में भी उसी का वजन है। तो रदीफ कहते हैं पीछे बैठा हुआ शख्स, घोड़े पे कोई बैठता है तो एक आगे बैठता है ना, तो दूसरा उसके पीछे बैठेगा, वो उसी से लफ्ज अर्दफ है, पीछे लगा दिया, जोड़ दिया। यानी कहते हैं कि इसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत अली को ये हुक्म देकर भेजा, क्या कहा? फमरहू युअज़्ज़िना बरातो, के वो ऐलान कर दें बरात का। वही बरात, यानी बरात किसको कहते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी बरातें, और हम मखारिज का ख्याल ना रखें तो सारी एक ही हो जाती। एक तो दूल्हा की बरात आती है जिसके गाने भी होते हैं और जिसके लिए माएँ बहनें बहुत सारी ख्वाब भी देखती हैं कि बरात पे जाने हैं, बरात के साथ जाने हैं। एक शबे बरात होती है जो 15 शाबान को मनाई जाती है। आप मुझे बताएंगे दोनों में क्या चीज़ें हैं, पहली बारात और दूसरी बारात में क्या फर्क है? शादी की बारात है वो क्या है? कुछ पता नहीं, बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये तो एक पीछे बुजुर्गों की या पिछले दौर में जब बहुत ज्यादा चोरियां चकारियां होती थी, तो जब किसी की लड़की को ब्याहने जाते थे तो वापसी पे उसका जहेज उठाना होता था। अब उस वक्त कोई कंटेनर और उस तरह ट्रक्स तो थे नहीं है, तो अपने साथ लड़के वाले कुछ मजदूर ले जाते थे कि वापसी पे हम सामान उठवा के लाएंगे। आई एम नॉट जोकिंग, ये इसकी हिस्ट्री है। एक तो ये वजह होती थी सामान उठवाते थे, पेटियां संदूक और जो भी फर्नीचर होगा। दूसरा ये होता था हिफाजत के लिए लेके जाते थे कि रास्ते में कोई चोर डाकू ना आ जाए, क्योंकि शादी है, कोई जेवर होगा, कुछ कीमती चीजें होंगी। इस तहफ्फुज़ के लिए लड़के वालों ने अपने साथ कुछ लोगों को ले जाना शुरू किया। और आज उसका क्या हाल हो गया कि बारात वालों की कदर ना करें, इज्जत ना करें, तो घर बने बने टूट जाते हैं। और बारातियों के बैठने की जगह ये है और गैर बारातियों के बैठने की जगह ये। और आप किसी ऐसी जगह पे बैठ के तो देखें आपको उठा देंगे, कहेंगे उठें ये बारात के लिए, ये दूल्हा के लिए। और मैंने लड़ाइयाँ क्या होती कि घर टूटते देखें, सिर्फ इसलिए कि हम आए और हमें इस्तकबाल ही नहीं अच्छा किया आपने और दिस एंड दैट। तो ये सिर्फ गैर इस्लामी तरीका जिंदगी है। चलिए दूसरा सवाल ये कि ये शब बारात जो हम मनाते हैं ये क्या होती है फिर, यानी उस लफ्ज़ को मैं बोल रही हूँ। तो ये बताइए कि ये, मैं अक्सर बचपन से सोचती थी कि ये शब बारात जो शादी की बारात होती है, तो हम बचपन में क्या सोचते थे जैसे शादी में खुश होते हैं, फूल जड़ियाँ होती हैं और खुशी होती है, तो ये शब बारात भी कोई इस तरह की जश्न की रात है जी। आप में से किसी को पता हो कि ये शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? किसी को नहीं पता,
तो बचपन से
जो सुना वही कभी सोचे ही नहीं।
उस रात पत्ते झड़ते हैं,
मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ नाम की बात कर रही हूँ इस वक्त। कभी सोचे ही नहीं, तो इस साल फिर पूछिएगा कि ये शब बारात क्या होती है। मनाने वालों को नहीं पता, शादियों से पहले मंगनी हुई हो तो शबरात जाती है, कभी ईद जाती है। क्या कर रहे हैं हम सब? मुझे तो ऐसे लगता है हम सब गुड़िया गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, सब अपनी खुशियों में मगन है। अब ये कर लो, और रस्मों कैसे तौक हमने अपने कंधों पर डाले हुए हैं कि अल्लाह के नबी के लिए। कुरान में आता है सूरह अल आराफ में कि अल्लाह ने इस नबी को भेजा जिसने लोगों के बंधन और तौक उनसे उतारे। इसर इगलाल के बोझ थे, लोगों ने अपने ऊपर रस्म और रिवाज के नाम पर डाले थे, नबी सल्लम की सूरत में वो खत्म किए। आज हमने वो सारे डाल लिए, बल्कि औरों के भी डाल लिए। अगर आप इसको खोल के देखें तो शब बारात नहीं कहते, वो शब बरात कहते हैं, जो यहाँ है बेजारी की रात। किसकी किससे बेजारी है? फिर इसके ऊपर वो चंद ज़ईफ़ रिवायात हैं कि इस रात अल्लाह ताला कुछ लोगों को जहन्नुम से बेनियाज कर देता है। आप पढ़ेंगे अभी अखबारों में, देखिएगा आर्टिकल्स आएंगे, तो अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहती क्योंकि फिर मौजू ही पलट जाएगा। लेकिन आप इधर आते रहें और इंशाल्लाह जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसमें भी कोशिश करेंगे 15 शाबान से पहले वो लेक्चर एक पूरा शाबान की हकीकत और उसकी रियलिटी, तो वो आपको भेज के सुनवा देंगे। आप यहाँ भी ज़रूर सुनिएगा, किसी भी तरह मौका बनेगा इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। ये मई के महीने में कहीं ना कहीं हदीस की क्लास में इसी में आपको सुना दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं, सब मिलके सुन लें? ठीक है, इसको नोट कर लें सिस्टर आप, फिर इस पे हम बात कर लेंगे बाद में। तो ये इल्म की बुनियाद पे हो। मैं अपनी जुबान से बोलूं तो मैं 10 जुमले बोल दूं, लेकिन मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो जब आप हदीस की रोशनी, कुरान की आयतों की रोशनी में सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो कहा कि लोगों को बारात का ऐलान कर दो, यानी बेनियाजी है कि अल्लाह ताला मुशरिकों से बेजार है। قال ابو هريره تا ابو هريره رضی اللہ تعالی نے فرمایا فازنا معنا علی فی اهل منا یوم النخر، حضرت علی نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منا کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا کہا؟ لا یحج بعد العام مشرک، کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ایک بات۔ اور ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی اس کے بعد بیت اللہ کا عریان طواف نہیں کرے گا۔ अब यहाँ इमाम बुखारी देखिए तवाफ की हदीस लेके आ गए। पढ़ रहे हैं हम लोग नमाज, रिस्वत क्या है कि जब तवाफ में सतर लाजमी है, तवाफ में कपड़े पूरे होने चाहिए, तो नमाज तो फर्ज है। बात वाज़ह, तवाफ तो सुन्नत है, करें ना करें आपको अजर तो मिलेगा, ना करेंगे तो गुना नहीं, लेकिन नमाज तो छोड़नी नहीं। और नमाज दिन में 5 बार है, तवाफ तो आप जाके कभी वहां करेंगे, नमाज तो आपने हर जगह हर वक्त पढ़नी है, 5 दफा पढ़नी है। तो यहाँ इधर इस हदीस के लाने की हिकमत क्या है कि देखो जब तवाफ नहीं कर सकते तो फिर नमाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पड़ों के बगैर नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टॉपिक है मा यूज करु फिल फखीजी। फखिस कहते हैं रान को, थाइस को। ऐसी जगह के बारे में क्या हुक्म है कि इसको नमाज में छुपाया जाएगा कि नहीं? मतलब मर्दों के लिए ऑफ कोर्स, औरतों के लिए तो पूरी चादरें ही होती है ना, लेकिन मर्द जब नमाज पढ़े तो क्या अपनी रान को छुपाएगा कि नहीं? यानी मतलब ये कि क्या सिर्फ अंडरवियर पहनकर या कोई पतली सी चीज पहनकर सतर को छुपा के नमाज पढ़ सकता है, या फिर पूरी रान को भी छुपाएगा, जैसे ट्राउजर्स हैं या लॉन्ग आप कह लीजिए कि वो क्या बोलते हैं उनको, शॉर्ट्स की सूरत में? इस सवाल का जवाब इस हदीस से मिलेगा। अन अनस रदी अल्लाह, यानी आप कह लें कि क्या मर्द शॉर्ट्स में नमाज पढ़ सकते हैं? اور کیا انڈر ویئر میں خالی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اس حدیث انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ خیبرہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا خیبر کا، یعنی غزہ خیبرہ کا مطلب کہ خیبر کی طرف کا رخ کیا لڑائی کی نیت سے. غزہ وہی لفظ ہے جس کو غزوہ کہتے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ جب خیبر کی طرف آپ گئے غزوے کی نیت سے. اور خیبر کیا جگہ تھی، یہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو وہاں یہود کے تین قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، تینوں مدینہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد رہتے تھے. لیکن انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ہی سازشیں کرنی شروع کر دیں، مسلمانوں کو ستایا. اسی طرح ایک موقع پہ ایک شخص نے مسلمان عورت کی عزت خراب کرنی چاہی، وہ کسی جیولر کی دکان پہ آئی تو اس کا جو کپڑا تھا تہمت کا اس کو پیچھے کسی جگہ باندھ دیا، جب وہ اپنی دھیان سے کھڑی ہوئی تو اس کا تہبند اتر گیا. اس کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے. اب یہ ایک مسلمان بیٹی کی عزت اور اس کے اوپر حرف تھا، اس بات سے مسلمانوں کو غیرت آئی، انہوں نے اس شخص کو مارا، قتل ہو گیا. اس پہ ہندو یہود نے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا دیا، تو اس پہ ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ بنو نذیر کے نام پہ. پھر جب وہ وہاں اس جنگ کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ مدینہ چھوڑ دیں، یہ یہاں سے نکلے تو خیبر میں چلے گئے، مدینہ سے تھوڑا دور تھا لیکن وہاں چلے گئے. چلو بھائی اللہ کے نبی نے مروایا تو نہیں کہا چلے جاؤ خالی کر دو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی چیز برداشت نہیں کر سکے تھے جس سے مسلمانوں کی عزت اور عورتوں کے لباس اور حجاب پہ زد پڑے. لیکن وہاں جا کر انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیے، سازشیں کی، بلکہ وہاں سے چونکہ آگے تبوک کے راستے اور عیسائی مملکتیں تھیں اس دور کی سپر پاورز، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ شروع کر دیے. تو لہٰذا پھر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے خیبر کی طرف رخ کیا، یہ اس کا ذکر ہے. خیر کیا ہوا، فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، کہتے ہیں کہ جب ہم خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے تو ہم نے وہاں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی. غلسہ کہتے ہیں بالکل ابھی اندھیرا ہی تھا، یعنی ابتدائی وقت ابھی صبح کا تھا، تو ہم نے وہاں نماز پڑھ لی. فرکیب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکیب ابو طلحہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے، ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے. ابو طلحہ کون تھے، کسی کو پتہ ان کے بارے میں کوئی بات؟ یہ حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے. آپ ام سلمہ پوچھیں گے کون تھی، حضرت انس کی ماں تھی، حضرت انس کی ماں تھی ام سلمہ. لیکن ابو طلحہ ان کے باپ نہیں تھے، ابو طلحہ کافر تھے. جب ام سلمہ کے شوہر جو مالک نام تھا ان کا انتقال ہو گیا ملک شام میں، ام سلیم کے شوہر تھے، اور ام سلیم جو تھی وہ حضرت انس کی ماں تھی. تو حضرت انس پہلے شوہر سے تھے جن کا نام مالک تھا، وہ ملک شام میں گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. ام سلیم کو رشتے آنے لگے، خوبصورت عورت تھی، خاندانی تھی، وجاہت والی تھی. ابو طلحہ نے بھی ان کو رشتہ بھیجا. ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی، ابو طلحہ کافر تھے. تو انہوں نے پھر ان کو بڑا خوبصورت انداز اختیار کر کے تبلیغ کی تھی کہ ابو طلحہ تم بت کو پوجتے ہو، وہ کیا کر سکتا ہے، پوجنا ہے اس کسان کو پوج لو جس نے بیج ڈالا، محنت کی، درخت لگا، کچھ تو کیا نا اس نے، چلو پوجنا ہے تو اس بڑھئی کو یعنی کارپینٹر کو پوج لو جس نے تراش کر یہ بت بنایا، اور اس بت کی تو کوئی طاقت نہیں. دلیل اتنی مضبوط تھی کہ ابو طلحہ قائل ہو گئے. تو ام سلیم نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے پہ تیار ہوں اور میرا مہر آپ کا اسلام ہوگا، یعنی آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے حق مہر نہیں مانگوں گی. یہ ابو طلحہ تھے. آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کی کہانیاں جب پتہ ہوتی ہیں نا تو یہ آپ کو اپنے فیملی ممبرز لگتے ہیں، اور ورنہ ہمیں تو ان کے نام بھی سم ٹائم پڑھنے مشکل لگتے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ بھی وہاں آپ کے ساتھ ہی تھے. خیر، اور کہتے ہیں انا ردیف ابی طلحہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اب ردیف کا معنی سمجھ آ گیا، پیچھے اردف یہی لفظ تھا، یعنی میں آپ کے پیچھے سوار تھا. پھر کیا ہوا، فاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زقا کی خیبرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑی لگائی دوڑاتے ہوئے. یہ جو لفظ ہے نا فاجر، یعنی آپ نے تیزی سے دکھائی، یعنی سواری کو جیسے وہ ایڑ لگاتے ہیں نا، چل چل زور زور سے چلانا، وہ مطلب ہے. اور زقا کی خیبر، زقا کہتے ہیں گلیوں کو، اور خیبر کی گلیوں میں آپ نے اپنی سواری کو تیزی سے دوڑایا. وہ ان رکبتی لتمسو فخیزہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا رسول اللہ کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا. یعنی اب ظاہر ساتھ ساتھ چل رہے تھے سارے، تو کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا اللہ کے نبی کی ران کے ساتھ چھو جاتا تھا. फिर क्या हुआ? सुम्मा खसर अल इजारा अन फखीजही, फिर आपने हटा दी चादर अपनी रान से, यानी आपने अपनी रान से कपड़ा हटाया। हत्ता इन्नी अनजुरु इला बयाजी फखीजी नबीअल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि मुझे आपकी रान मुबारक की सफेदी नजर आने लगी। फलम दखल अलकरियत काला, फिर जब आप बस्ती में दाखिल हो गए तो आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। खरीबत खैबर, खैबर बर्बाद हो गया, वीरान हो गया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना नारे में मुर्दाबाद, फला मुर्दाबाद, क्योंकि जंग के लिए जा रहे थे तो अल्लाह का नाम बड़ा किया और दुश्मन के नाम के साथ बता दिया कि ये तो आज वीरान हो जाएगा। इन इजा नजल न बिसाहती कौमिन, हम जब किसी भी कौम के आंगन में उतरते हैं, फसा सबाहुल मुनजरीन, तो बहुत बुरी होती है सुबह उनकी जिनको डराया गया। कुरान पाक की आयतों में भी इसका तस्करा मिलता है। यानी अल्लाह के नबी सहाबा को जोश दिलाते हुए ऐसे नारे लगाते थे कि जब हम किसी दुश्मन की जमीन में उतरते हैं तो फिर उनको बचने का मौका नहीं मिलता। यानी अल्लाह का नबी जब कहीं चला जाए तो फिर वहां मदद उसी की होगी। और साथ ही कालहा सलासन, आपने ये बात 3 बार फरमाई, यानी ऐसी बात करके फरमाई 3 बार। काला, हजरत अनस कहते हैं, वखरज अल कौम इला आमालिहिम, कहते हैं कि बस्ती के लोग अपने अपने काम के लिए निकले, आमाल अमल से, यानी किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, तो वो सारे जो थे वो अपनी अपनी जगह से निकल गए। फकालु, फिर वो बोले, मुहम्मदु वल खमीसु, यानी जैशा, जब उन्होंने अचानक आपको देखा तो कहा मोहम्मद और उनका जैश, यानी उनका लश्कर आ पहुंचा। यानी उनको हैरत हुई कि अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। काला, हजरत अनस कहते हैं, फअसबनाहा अनवतन फजुमियस सबयु फजा दहयतु, हजरत अनस कहते हैं कि हमने खैबर को फतह कर लिया। असबाना असबनाहा अनवा, हा से मुराद यहाँ खैबर है, यानी कि हमने खैबर को फतह कर लिया जंग के साथ, यानी वहां लड़ाई हुई दुश्मनों के साथ, तलवारें चली और उसके बाद जो था वो दुश्मन को हमने पकड़ लिया। यानी खैबर की तरफ गए और वहां जब दुश्मनों से मिले तो कहते हैं कि जंग हुई, और जंग हुई थी। हकीकत है कि मुसलमानों की अगर इन जंगों के हालात हम पढ़ें तो हमें यकीन नहीं आता आज कि ये सब कैसे होता था। यानी ये ऐसी नामुमकिन चीज़ें थी कि जिसको अगर आज देखें, इस ट्रिप में नहीं, इससे पिछले ट्रिप में मौका मिला था हमें मदीना के इर्दो गिर्द जो यहूद के जो किले थे ना, जो उनकी गढ़ियाँ थी बनू कुरैज़ा की, वो हमने देखी थी। और वहाँ खड़े होके वो सारी बातें जो सीरत में पड़ी होती है ना, वो ज़्यादा समझ आती हैं, फिर यकीन नहीं आता कि ये कैसे। और आप आज भी वहाँ अगर कभी जाके देखें ना, तो वहाँ एक पहाड़ बिल्कुल जल गया था, यानी आग लगी थी उस पहाड़ में एक मौके में, बिल्कुल आज ऐसे देखे ना तो जैसे पत्थरों को अगर जलाएं तो ऐसे छोटे छोटे अंदर सुराख है। यानी उन जगहों की यादगारें अल्लाह ने कायम की हुई है। फिर वहां उधर गए तो वहां एक जगह पे दूर से एक पहाड़ था, यानी अल्लाह के नबी की एक पेशन गोई थी कि इधर आग लगेगी और मुल्क शाम के पास वो आग लगेगी और मदीना वाले लोग यहां से देखेंगे, तो वो पहाड़ भी नजर आता है। यानी ये वहाँ वैसे तो आप देखिए कि और कुछ भी नहीं है। इतना मुसलमानों को अगर हिस्ट्री ना आती हो तो यकीन करें जो लोग जाते भी हैं ज्यारतें करने इधर उधर, वो ऐसे ही रुक के आ जाते हैं, तो उनको इतना एंजॉय नहीं करते। लेकिन ये सब चीज़ें अब इस वक्त हम पढ़ तो हदीस रहे, लेकिन अब जहाँ जहाँ ये चीज़ें आ रही हैं इनको ज़्यादा कौन इंजॉय करेगा? जिसने सीरत पढ़ी होगी। तो यही बात जहाँ वो कह रहे हैं कि हम वहाँ निकले, फिर हमने वसब ना हान वतन, हमने वहाँ तलवारें चलाई और हम जीत गए। फजुमिया सबीजू फजा दाहियतो, फिर कहते हैं कि सारे कैदी जमा हो गए, यानी जो वहाँ दुश्मन थे उनको कैदी बना लिया गया। और उसके बाद हजरत दाहिया आए। हजरत दाहिया की क्या खूबी है जी? बहुत ही इम्तिहान है आज तो आपके। दो बातें इनकी, वो तो और थे कोई, वो कौन थे? चले ये भी अब आप ही बताएं। किस साहबी की शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी? मेरा ले एक सीरत का क्विज करवा लें आपका। किसी को नहीं याद? मुसब बिन उमर। गज़वा उहद में जब इनकी शहादत हुई थी तो खबर फैल गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो दाहिया कल्बी की क्या खूबी थी? शाबाश, खूबसूरत सहाबी थे। कहते औरतों की तरह इनका गोरा रंग था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब इंसानी रूप में आते थे वही लेकर, तो इनकी शक्ल में आते थे। तो इस जंग में देखे ये लड़ने गए, अब खूबसूरत है तो घर में नहीं बैठ गए, नाजुक अंदाम जंगों में गए, लड़ाइयाँ हुई। तो ये कहते हैं कि हजरत दहिया आए, फिर क्या हुआ, फ़काल या नबी अल्लाह, कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या कहा, आतिनी जारियतम मिनस सबीजी, कैदियों में से मुझे एक लौंडी अता फरमा दे। काला फरमाया, इज़हा फ़खुस जारिया, आपने फरमाया कि ये लौंडी ले जाओ। फ़खज़ सफ़िया बिन्त हुयई, उन्होंने हजरत सफ़िया जो हुयई की बेटी थी उनको ले लिया। फ़जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़काल, फिर एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आतई त दहिया था सफ़िया था बिनते हुनई, क्या आपने दे दिया है दहिया को सफ़िया बिनते हुई, जो कि सैयद था कुरैज़त वन नज़ीर, जो कुरैज़ा कबीले और नज़ीर की सरदार है, यानी ये हुई बिन अख्तब की बेटी थी। तो कहने लगे कि आपने सरदार की बेटी एक आम साहबी को दे दी, ये तो ठीक नहीं है। ला तसलुहु इल्ला लका, नहीं वो सूट करती मगर आपको, यानी आप भी सरदार हैं वो भी सरदार हैं, तो लिहाजा आप एक आम साहबी को ना दें बल्कि आप रख लें। और ये जो मौजू है लौंडियों का, कुरान में आप इसको बार बार समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब जंगें होती थी तो दुश्मन का सब कुछ मुसलमानों को मिल जाता था, खुदा ना खास्ता अगर मुसलमान जंग हारते तो उनका सब कुछ उधर चला जाता था। तो अब चीज़ें तो सामान असलहे की सूरत में जो ही उसको तो संभाल लिया, इस्तेमाल कर लिया, इंसानों का क्या किया जाए, खाना भी है पीना भी है उनकी ज़रूरियात भी है, एक सूरत क्या उनको कत्ल कर दिया जाए, जो कि पहले से होता था। अल्लाह के नबी ने इसको नहीं पसंद किया। जो मर्द आते थे उनको गुलाम बनाया जाता था, फिर उनसे बेकार ली जाती थी। अल्लाह के नबी ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कवानीन मुरतब किए कि जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुलामी ख़त्म हो गई। सहाबा गुलामों को आज़ाद करते थे और जिनके पास गुलाम आते थे उनको वो अच्छा खाना खिलाते थे, खुद कहते हम खजूर खाते थे जो मदीना में सस्ती मिलती थी, और अपने गुलामों को रोटी खिलाते थे। अब रह गई बात, जो औरतें आती थीं, दुश्मन अपने साथ औरतें ले आते थे ताकि ज़रा मुसलमानों को गैर दिलाएं और नाचते गाते, और इस्लाम के खिलाफ निकलती थी वो औरतें। अब सवाल पैदा होता है उन औरतों का क्या किया जाए, एक सूरत उनको वापस भेज दिया जाए कुफार में, तो वो तो फिर और ही ज़्यादा फितना फैलेगा क्योंकि इस्लाम और कुफर की जंग चल रही है। अब इनको साथ ले आए, अब क्या किया जाए, इन सबको बेटियाँ बना दिया जाए कि ये उम्मत मुस्लिमा की बेटियाँ हैं, इनकी शादी ना हो ब्याह ना हो ये भी दुरुस्त नहीं है। कहा जाए अच्छा भाई तुम्हारी बेटी की सूरत है, इसको अपने घर ले जाओ बेटी बनाओ। इन सारी चीज़ों का बीच का हल क्या था कि जिस तरह इन औरतों को सर्वाइवल चाहिए था, घर चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसी तरह इनके जिस्मानी हकूक भी थे। तो जिस तरह शादी में एक बाप अपनी बेटी का क्या करता है, आप देखिए निकाह क्या है, चंद बोल तो बेटी उनकी हो गई। वो मर्द जो हाथ भी नहीं लगा सकता था, वो उसके साथ आपके सामने उसका हाथ पकड़ के ले जाए आप नहीं रोक सकते, ऐसे ही है ना। निकाह क्या है, चंद बोल है ना, बाप अपनी बेटी चंद बोलों के साथ किसी गैर को देता है तो उसको निकाह कहते हैं। इसी तरह अमीरे लश्कर यानी जो मुसलमानों का हाकिम है, वो किसी दुश्मनों की तरफ से आई हुई औरत को अपनी मर्जी से किसी एक सहाबी या एक मुजाहिद को देता है तो वह एक किस्म की दूसरी निकाह की सूरत है। फिर सवाल है, फिर इसको निकाह ही कह दे, लॉन्डी क्यों कहते हैं, या इसमें यानी स्लेव गर्ल्स के, तो जो आपके घर में एक आज़ाद मुसलमान औरत आपकी बीवी बनी है उसका हक ज्यादा है। ये औरत आई तो इस्लाम की दुश्मनी में थी ना, इसके पीछे लंबी बातें हैं, इसलिए कभी इन लफ्ज़ों को सुनकर परेशान ना, और याद रखें ये इस्लाम ने नहीं शुरू की, इस्लाम ने ख़त्म की है। आज कहीं लॉन्डिज्म नहीं है, आज कहीं गुलामी नहीं, ये किसने ख़त्म किया, ये इस्लाम ने ख़त्म किया। तो ये सब पीछे से चल रहा था, तो लिहाजा हजरत सफ़िया जो कि जंग हारे लोग, तो वो सफ़िया भी कैदियों में आ गई। तो एक सहाबी ने एहसास दिलाया कि जाहिर है जो भी है, और देखिए इसमें उन्होंने हजरत सफ़िया की रियायत की है ना, कि एक अच्छे घर की आई हुई है, पता नहीं ये बेचारा सहाबी गरीब हो, खाए पिए नहीं, क्या करे, उसको कोई इज्जत ना मिल सके, तो इज्जत की बात है आप उसको ले लें। अल्लाह के नबी ने कहा, काला उदहू बिहा, जाओ उसको बुला के लाओ। इससे तो चलता है अल्लाह के नबी मशवरा सुनते भी थे और मान भी लेते थे जब ठीक होता था। फजा बिहा, पस जब उनको ले आए, फलम्मा नजर इलैहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जब नबी सल्लम ने उनको देखा, यहाँ पता चल रहा है इससे पहले देखा भी नहीं था। काला फरमाया, खुश जारियत मिन सब्जी गई रहा, कहा कैदियों में से कोई और लौंडी ले लो। काला फरमाया, फ़तक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तज़व्वजहा, फिर अल्लाह के नबी ने उनको लिया, आज़ाद किया और उनसे निकाह किया, यानी आपने उनकी इज्जत पे और उनकी अना पे चोट नहीं आने दी बल्कि उनको आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। वजाला सदाक़हा एतक़हा, कहा उनका महर, ये जो सदाक़ा है ना कुरान में कैसे आया लफ्ज़, सूरत निसा में, औरतों को दे दो उनके صدقاتی ہننا حق مہر کو کہتے ہیں. دیکھیے صدقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے عورت کا حق مہر. ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ صدقہ, صدقہ دال پہ جزم کر دیں گے نا تو صدقہ چیریٹی, لیکن صدقہ دال کی پیش کے ساتھ کریں گے تو حق مہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کو صدقہ کیوں کہتے ہیں, یہاں صدقہ کیوں کہ, تو صدق سے سچائی. ایک مرد کا اپنی بیوی سے سچا ہونا, سنسیئر ہونا اور سیریس ہونا ہے حق مہر. پھر بول دیتی ہوں حق مہر کیا ہے. ایک مرد کی طرف سے ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں اس لڑکی کو بساؤں گا. یہ صرف لو میرج نہیں ہے, یہ صرف پیپر میرج نہیں ہے, یہ ٹائم باؤنڈ میرج نہیں ہے تین ماہ کی نہیں, بلکہ مرد کہتا ہے کہ میں اس کے معاملے میں سچا ہوں کہ میں اس کو ہمیشہ کی نیت سے بسا رہا ہوں. بات واضح. تو یہ قسم کی عورت کی آنر ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کا حق مہر جو تھا وہ کیا رکھا, ان کی آزادی کو رکھ دیا کہ آپ کی آزادی ہی بہت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کیسے حق مہر بنتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ بکتے تھے اس دور میں لونڈیاں اور غلام, ٹھیک ہے. اب 10,000 کا ایک غلام بکتا ہے یا ایک لونڈی 10,000 کی بکتی ہے, تو آپ نے وہ 10,000 نہیں دیے لیے آزاد کیا اور اس آزادی کو ان کا حق مہر بنا دیا. یہ مراد ہے اس سے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کانا جب تھے وہ بت طریقی راستے میں, یعنی ابھی آپ راستے میں ہی تھے واپسی کے, یعنی مدینہ جا رہے تھے. جب حضرت تھا لہو ام سلیم تو تیار کیا گیا ان کے لیے ام سلیم کو, فحدت تھا لہو من اللیلی, پھر اس کے بعد یعنی آپ نے وہاں سے نکاح کیا اور حضرت صفیہ جو آپ کے لیے راستہ کر کے رات کو آپ کے پاس بھیجا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلہا کی حیثیت میں ان کے پاس گئے. مراد ہے کہ جنگ کے واپسی پہ راستے میں شادی بھی ہو گئی. ہم ہوتے تو ابھی تو بات ہی نہ پکی ہوئی ہوتی, شادی کہاں ہونی تھی, ہم نے اتنی مشکل کر دی شادیاں. فأخذت هام له من الليل, رات کو آپ ان کے پاس گئے ایک دلہا کی حیثیت میں. فاصبح النبی, پھر صبح کی اللہ کے نبی نے عروسن دلہا کی صورت میں. فقال, فرمایا, من کان عنده شیء, پھر جس کے پاس ہو کوئی چیز, فل یجی بھی, پس لے آئے اس کو. کیا کرنا تھا, ولیمہ کرنا تھا تو کیا کرے, صبح اٹھے اللہ کے نبی کے پاس کیا ہوگا, سفر میں کیا ہوتا ہے, کسی کے پاس بچے ہوئے بسکٹ ہوتے ہیں, کسی کے پاس کوئی کھجوریں بچی ہوتی ہیں. سفروں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ ٹرانزٹ ہوتے ہیں کسی ایک ملک سے دوسرے میں, دو تین گھنٹے کا سٹاپ ہے تو کیا کرتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ ہمیں تو بڑا اچھا اللہ نے دلوا دیا تھا, ایک بیچ میں ساتھی ایسے, جب ہم یہاں سے جا رہے تھے عمرے کے لیے, تو جب لبنان میں ہم رکے تو 3 گھنٹے کا سٹاپ تھا. اب عادت بھی نہیں ہے زیادہ ایئرپورٹس پہ لینے کی, کھانے کی کرنسی چینج ہوتی ہے, اور ویسے بھی جہاز میں اتنی دیر بیٹھ کے کھا پی کے تھکے ہوتے ہیں. تو لیکن ہمیں ایک ایسی سسٹم مل گئیں اتر, جو اسی لاؤنج میں تھی جو وہاں سے واپس لندن آ رہی تھی, ان کے ساتھ 2-3 بیٹے تھے, ان کے بڑی اچھی فیملی تھی. خیر قصہ مختصر کہ اس عورت کے ساتھ ہمارا ٹائم بھی اچھا گزرا, ہم نے ان سے کلاس بھی لی اور پھر انہوں نے اپنے جو ان کے سنیکس بچے ہوئے تھے سب ہمیں دے دیے, اپنے ٹیلی فون کی سمز ہمیں دے دی, ہم نے وہی یوز کی. میں سوچتی تھی ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اگلے عمرے میں ہماری جو سم تھی وہ انہیں کی یوز ہوئی. تو یہ مسلم ہوڈ ہے نا. پھر انہوں نے ہمیں اس طرح کی جو جو چیزیں انہوں نے ہمیں دی, ہم نے تو خریدنی بھی کوئی نہیں تھی, تو اللہ مال غنیمت دے دیتا جنگوں میں, اس طرح صحابہ کو بھی مل جاتا ہے. تو صبح اٹھے, اب آپ کے ہائے کتنی بےزتی کی بات ہے, ولیمہ کرنا ہے, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کہاں ہاں لاؤ بھائی لاؤ. وہ بس اتا نیتان فجالا رجلو یجیو بے تمری وجالا رجلو یجیو بے سمنی. اب دیکھیے ذرا ولیمہ کن چیزوں کا بنتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے کہا جو کچھ ہے بولے, آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا, یعنی آپ نے وہاں بچھایا, کوئی کھجورے لے آیا, کوئی گھی لے آیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ ستو کا بھی ذکر آتا ہے, ستو آیا, لوگوں نے اس کا ملیدہ بنایا. عرب لوگ کیا کرتے تھے, ستو کھجوریں گھی کو ملا کے نا وہ ایک لیوی سی بنا لیتے ہوں گے, اور وہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئیں, کوئی کچھ لے آیا. اب اس میں اگر آپ بس لفظ دیکھیں, بسط نیتان, بسط بچھایا, نیتان چمڑے کا دسترخوان, یعنی جو ٹیبل کلاتھ کہہ لیجئے. فجال رجیو بھی تمر, تمر کہتے ہیں کھجور کو. پھر دوسرے بس سمن, سمن کہتے ہیں گھی کو. اور قال اخسبہ, اور میں گمان کرتا ہوں اس کو, قد ذکر سویق, سویق کہتے ہیں ستو کو. غزوہ سویق بھی تھی ایک, مسلمانوں نے جو جنگ لڑی اس میں ایک قصبہ سویق بھی تھی, کیونکہ دشمن اس میں بہت سارے ستو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, تو وہ سب مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ مل گئے تھے. بہرحال قال, فرمایا, فحاسو حیسن, پھر اس کا ملیدہ بنایا. فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھا رسول اللہ کا ولیمہ. آپ بھی یہ ریسپی لے جائیں, یہ مینیو لے جائیں. نہیں آئے گا تو جن کو صرف کھانے کے لیے آنا ہے وہ نہ آئیں. آپ دیکھیں کہ کیسی بات ہے نا، بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیں اتنی طویل حدیث ہے، حالانکہ اس میں موضوع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو کھلا ہوا دیکھ لیا تھا حضرت انس نے. اصل حدیث میں جو اس عمل کا نقطہ یا جو ہمارے موضوع سے متعلق تھا وہ تھا، اور ہم نے اس میں پوری دعوت ولیمہ بھی انجوائے کر لی. تو حدیث پڑھنے کا یہی مزہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو انسانی زندگی کی باتیں دکھتی ہیں نا. تو ایک چیز تو آپ کو مل ہی رہی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن آپ اس میں پھر دوسری چیزیں بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے اوپر سوچیں کہ اس دور کی زندگی کیسی تھی اور آج ہماری زندگیاں کتنی مشکل ہیں، کیوں مشکل ہو گئی ہیں ہماری زندگیاں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم خود اپنے اوپر اتنا مشکل لے لیتے ہیں ان چیزوں کو، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور آپ دیکھیں ایک لائیولینس دکھتی ہے، کوئی گلے نہیں، کوئی شکوے نہیں، بھولے لوگ تھے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو نہ کھایا، کچھ بھی نہیں. اور مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار دکھتا ہے کتنے جولی، کتنے ریلیکسنگ. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہر وقت ڈنڈے کے زور پہ یہ کرو یہ نہیں کرو، بہت زیادہ غصے والے اور بہت لوگوں کے اوپر روپ ڈالنے والے، کچھ بھی تو نہیں. مجھے جو حدیث پڑھنے کے بعد یقین کرے فیلنگ ملتی ہے کہ ایک اچھا لیڈر اور ایک دائی دین وہ کیسا ہونا چاہیے. ہر وقت کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. آپ جب دیکھیں مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے نبی کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. آپ سفر میں ہیں، جنگوں میں ہیں، حضرت انس جو غلام ہیں آپ کی ران کو ان کو چھو بھی رہے، اٹس اوکے. یہ جو آج ہم نے شخصیت پرستی کے جال بنا کر بزرگوں اور ان کی گدی نشینی اور ان کے ساتھ بہت ہی ایک تقدس کا طریقہ اختیار کر لیا نا، وہ بھی درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ والا سیشن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.